चलता है वही ग्राहक होता। उधर भी कुछ किया भक्ति वेदन था महाराज जी राज्य से तीन महीना वो राज्य में उसके बाद रिकॉर्ड है। उनके बाद भी बहुत सारे संतों का लाभ हमें हमेशा मिलता है। क्योंकि महाराज जी का अवसर का सुनने का थोड़ा सौभाग्य मिला। उनकी विद्वता, उनकी निष्ठा, उनके शास्त्रों के प्रति की जो दृष्टि बड़े हृदय के ऊपर बड़ा प्रभाव था। मैं फिर से भी महाराज के चरण में वंदन करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये जो आश्रम बना प्रेम को इसके अंदर सभी धर्मों के लिए, अरे हिंदू धर्म ही नहीं सभी धर्मों के लिए पूरा आदर और प्रेम रखा जाता है। और हरेक प्रोग्राम तीन सारा जिन्हें सस्ता है इन मारे पे आप लोग सुविधाजय है चौथा और पांचवी मंदिर भी हॉल है। तो उसमें हॉल है इसके अंदर अनेक प्रोटियां चलती है उसमें ऐसे पढ़ाए और उनका प्रवचन का दर्शक का लाभ हमें मिले वो हमारे सभा की बात है। फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे से जो जो प्रोग्राम आपका हो कृपा कर जो इधर पधारिए और इनका लाभ हम लोग समाज को देने की प्रार्थना है। हरे ओम।
भागवत कार्टून रस से प्यार इसके संबंध में कुछ कुछ की क्या भागवत का क्या वैशिष्ट है और शास्त्रों से वेदों से उपनिषदों से गीता इत्यादि से क्या वैशिष्ट है इसके संबंध में हमने बताया। व्यास जी ने महाभारत में गीता रूपी रत्न को दान दिया। वही श्रीमद्भागवत से गीता के प्रवक्ता श्री व्यास जी ने अंत में अपनी अंतिम कृति श्रीमद्भागवत को प्रस्तुत किया। जगत के शांति उन्होंने कहा गीता जहां पर समाप्त होती है श्रीमद्भागवत वहां से प्रारंभ होता है। गीता आधार भूमि है, यदि आधार न रहे नींव न रहे पक्की तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, वो गिर करके चकना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेसिस कंक्रीट से भी अधिक बेसिस हमारी भारतीय संस्कृति का बेसिस ये गीता है। उस गीता के ऊपर में प्रेम के किसको कहते हैं ये बतलाने की चेष्टा की गई है। मैं संसारिक विषयों में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो भी हमने सुना है और जहां तक कुछ देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि विज्ञान ने बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाई। ऐसी छलांग लगाई सारे जगत को एक मुट्ठी में बांध दिया, जो बहुत दूर के थे बहुत निकट हो गए। सुनते हैं कि ध्वनि से भी तेज चलने वाली बाइक माने इत्यादि मिल गई और समय की गति से भी तेज एक जगह से दूसरी जगह में एक पृथ्वी के छोर से लेकर दूसरी पृथ्वी के छोर तक उस व्यक्ति को पहुंचा रही। संचार की ऐसी व्यवस्था भी कहीं इंग्लैंड में कुछ हो रहा है और कोई वक्ता बोल रहा है क्रिकेट खेल हो रही है उसके संबंध में लोग बोल रहे हैं और यहां पर घर बैठे चुपचाप सब कुछ देखते हैं। ऐसे जगत को मानो ऐसा एकत्र करके मुट्ठी में कर दिया है, सब लोग एक हो गए। पृथ्वी बहुत छोटी हो गई, विश्व बहुत छोटा आयतन का हो गया, किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका ये पहलू, पहला तो ये देखो किसी का हृदय यदि गड़बड़ हो गया दूसरा हृदय लेकर के प्रत्यार होगा, दिमाग किसी का सड़ गया दूसरा दिमाग सड़ गया। रसोई घर के एक छोटे कोने से लेकर विज्ञान के बहुत क्षेत्र में इसने बड़ी उन्नति की, कमाल किया, आश्चर्य लगता है। किंतु इसका दूसरा पहलू ये, शरीर की भूख इसने बढ़ाई विज्ञान ने, आत्मा के गुण सारे विनष्ट हो गए। सबसे जो प्यारा चीज जो संपत्ति मनुष्य की थी, जीव जंतु प्राणी सबके जो मूल संपत्ति थी वो था प्रेम, वह प्रेम अंतर्जित होने लग गया, जजने कहां भूलने लगा। ये सब उन्नति हुई, वैभव को बढ़ा, सब कुछ हुआ, किंतु अब पहले जैसा राम और सीता में जैसा प्रेम था, जैसे गोपियों और कृष्ण में प्रेम था, जैसे आज से पहले 50 वर्ष की बात करता हूं जिस समय हम लोगों ने घर छोड़ा उस समय भी देखा पति और पत्नी में अगाध प्रेम, भाई और भाइयों में प्रेम, पिता और पुत्र में प्रीति, पड़ोसों के साथ में प्रीति, कितने बड़े जोर से जो छलांग लाए गए बीच विज्ञान ने प्रेम को छोड़ दिया और नीचे वो प्रेम टूट गया। कलकत्ते में बंबई में दिल्ली में हम लोग जाते हैं देखते हैं लोगों की इतनी भीड़ रास्ते में निकलना बराबर मुश्किल है, शरीर से शरीर रगड़ता है और उसमें एक आदमी भी गिर जाए किसी की सहानुभूति नहीं जो उसे उठा ले। एक फ्लैट बनाने वाले में एक को घर में आदमी मर रहा है और दूसरे घर में विवाह हो रहा है, कोई सहानुभूति पहचानता नहीं किसी फ्लैट में कौन है। धीरे धीरे प्रेम लुप्त होता जा रहा है, अभी कुछ प्रेम देखा जाता है कहीं कहीं, कुछ दिनों के बाद में ये प्रेम भी लुप्त होने वाला है यदि विज्ञान और उन्नति करता है। और यदि विज्ञान ने उन्नति करके आत्मा का डिस्कवर किया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जबकि एक छलांग लगाई और किसी योग्य संतों का संग उनको मिल गया तो फिर से प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकता है। आज स्थिति समस्या प्रॉब्लम इस प्रेम की है। प्रेम बहुत कम दिखने में मिलता है। यहां पर पति का बैंक बैलेंस अलग हो, पुत्र का अलग हो, पुत्र वधु का अलग हो, बेटी बेटियों का अलग हो, वहां पर एक दूसरे को विश्वास नहीं, वहां पर प्रेम कहां से आएगा? प्रेम तो वहां रहेगा जब एक तरफ से फुटबॉल ग्राउंड में गेंद उठा दी, फर्क की तरफ से ये राज्य नहीं मेरा नहीं तुम्हारा, और फर्क ने मौत से फुटबॉल दिया राम के तरफ में, भले नहीं ये राज्य मेरा नहीं तुम्हारा, इससे प्रेम। इसलिए प्रेम की समस्या है। अब 5000 वर्ष पहले, अभी 500 वर्ष पहले चले, जगत में कृष्ण पैदा हुए, चैतन्य महापुरुष राधा जी का भाव दिया, देखा जाए जगत में किसी चीज की कमी नहीं, सब चीज सब चीज चल रहा है, प्रेम का अभाव होता है, प्रेम की समस्या है। इसलिए वो जब पूरी जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आ रहे हैं, वहां पर भालू बाघ सांप हिरण हाथी मत वाले सभी एक साथ में महाप्रभु जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और महाप्रभु हाथ उठा करके हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल कर रहे हैं, और उनके पीछे में बाघ हिरण का मुख चाटता हुआ बड़े प्रेम के साथ में एक साथ वो भी उच्चारण कर रहा है हरी बोल हरी बोल। उन्होंने जीव मात्र को छोटा बड़ा नहीं समझकर सबको प्रेम दान करने की चेष्टा की, जगाई मधाई जैसे पियक्कड़ को भी समस्त धर्म से विहीन उस व्यक्ति को उसे गले लगाया, और वो भी हरी बोल हरी बोल, वो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, आंखों में आंसू सबके भर आए। अभी बेटी ने बड़ा सुंदर एक गान किया, बाबा की फल देला माला करते हैं गिन गिन करके, और कृष्ण को भूल जाते हैं, मन की माला टूट जाती, माला टूट जाती है, ठीक है। यदि कृष्ण नाम कर रहे हैं और आंखों से आंखों की अग्र धारा प्रवाहित नहीं होती, हृदय द्रवित नहीं हो जाता, तो समझो कि हमारे बहुत जन्म जन्मों के अभी अपराध हैं, अभी कृष्ण नाम नहीं आ रहा। चैतन्य महापुरुष बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, उनका जीवन ही प्रेममय है, उनका स्वरूप भी प्रेममय है, उनकी शिक्षाएं प्रेममय है। इसलिए प्रेम की शिक्षा उन्होंने दी, उन्हें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्ध ये सब का विचार नहीं किया, हरि का भजा तो अच्छा है। हम आत्मा है तो इससे हम भेद की कल्पना करते हैं, हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, किंतु देखिए एक ही सबके जीवन में, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग गधा घोड़ा सूकर भी हो तीर पतंग भी हो, प्रेम का किसी न किसी रूप में उसमें जरूर कुछ पोटेंसी रहेगी ही, ये कभी नहीं भूल सकते। जैसे एक सुअर भी अपने बच्चे को प्यार करती है, यदि सुकरी को कहीं ले जाना है सुकर के बच्चे को गोदी में उठा करके इधर चलो देखो उसके पीछे पीछे पड़ती, गैया अपने बछड़े को प्यार करती कितनी प्यार करती है, स्कूल कॉलेज में नहीं गई, प्रेम का पाठ उसने कहीं नहीं पढ़ा, जन्मते ही अपने बछड़े के प्रति कैसा प्रेम है, मरता हुआ प्रेम उसके लिए अपने जान को दे देगी, कैसा प्रेम, ये प्रेम किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, ये प्रेम पढ़ने से नहीं, ये हमारी इसमें निश्चित रूप से ये है किसी न किसी रूप में ये प्रेम है। पति के प्रेम को शुद्ध करना है, स्त्री के प्रति जैसा प्रेम है पति के प्रति जैसा प्रेम है, अब यह प्रेम नहीं ये काम है, स्वार्थ है। गाय को हम लोग आदर करते हैं, इसलिए गाय को नहीं, गाय यदि दूध नहीं देती और बच्चे नहीं देती तो गाय को हम पालन नहीं करेंगे, आम का पेड़ लगाते हैं बबूल का पेड़ नहीं लगाते, इसलिए आम से सुंदर सुंदर मीठे फल मिलेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं, इसलिए आम के रक्षा के लिए हम उसे पानी देते हैं, ऐसा नहीं उसे हमारा स्वास्थ्य निकलता है, इसलिए यह स्वास्थ्य प्रेम का ही विकृत स्वरूप है। जब इसी जगत का ये जो काम है, बात है, इसको सबको एकत्र करके शुद्ध करके और कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे तो ये विशुद्ध होते हैं। आत्मा का आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति जो भाव होता है, प्रेम होता है, यही यथार्थ प्रेम है। अभी हम लोग सभी स्वार्थ में हैं, किसी न किसी में जरूर स्वार्थ रहेगा जब तक कि ये शरीर को मैं समझता हूं कि मैं हूं। इसको कहते हैं शरीर में आत्मभाव, इसको छोड़ना हो, इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है। गीता पढ़े बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए कल इसके संबंध में हमने बताया। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रेम के संबंध में हम कुछ दो एक एक लोगों की मैं व्याख्या करूंगा। कृष्ण जी रास क्या है? रास माने रस शब्द से ये रास। रस माने क्या है? इस चीज को समझने के लिए थोड़े से दार्शनिक पहलू मैं कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो दुख चाहता है, किंतु सुख पाने के लिए जो तरीका जो ग्रहण करता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई मदिरा पान करने में सुख समझता है, कोई अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति या दूसरी स्त्री को इसमें सुख मानते हैं, कोई मांस खाने में सुख समझता है, किंतु सुख किसमें है? शास्त्रकार ने बारीक बहुत गवेषणा करके विचार करके बताया, बिना हरि भजन के सुख नहीं दिखाई, शांति नहीं मिले। श्रुति सिद्धांत यह गुरुदारी भजिए राम सबकाज विचारी, भजिए राम सबकाज विचारी, सर 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 शब्द है, भजिए राम सब कार्य। किंतु हम लोग आए थे हरि भजन को, वो तन लगे कपास कपास, अब लोग कपड़े बनेंगे, कपास बुनो, फिर बुलाई होगी, रुई आएगी, तकलीफें काटो, काट करके पत्थर बनाओ, पहनेंगे इस पे। आए थे हरि भजन को, वो तन लगे कपास, आए थे हम आत्मज्ञान लाभ करके, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भजन करके, अपने जो अपना जो होम है, अपना जो घर है, वहां जाने के सब हम लोग रीति की आए हैं दो दिन के लिए, बस इसी को बनाने में लग गए। और दो दिन के बाद में अरे महाराज ये किराया समाप्त होगा, अब चलना है, सब बना बनाई नहीं पर रह जाएगा, उसके लिए हमने कोई चिंतन नहीं किया। इसलिए कहते हैं मनुष्य मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का धर्म है प्रेम। अभी प्रेम बिखरा हुआ ये काम और स्वार्थ है, यही शुद्ध होने पर, भगवान के प्रति लगने पर इसको कहते हैं प्रेम। श्रीमद् भागवत इसी प्रेम को अपना उद्देश्य और ऑब्जेक्ट मान करके उसी की तरफ में ये बढ़ाता है। कृष्ण ने बंसी बजाई, कल बताया उसमें गोपियों को घर लौटाने की बहुत, गोपियों ने कृष्ण को एक तरह से बसी खुद करके उनकी बातों को काटकर कृष्ण के साथ में रही। कृष्ण ने युक्ति के द्वारा यज्ञ पत्नियों को, ब्राह्मण मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों को तो लौटा दिया घरों में, किंतु इन गोप कुमारियों को लौटा नहीं सके। रस कहते हैं, रस ही अराश है, कैसे? एक चीनी गुरु का रस है, उसे चीनी का शरबत अच्छा है, उसमें नींबू और केवड़ा इत्यादि लगा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। उससे जो परस्पर जो प्रेम करते हैं, या हम टीवी इत्यादि में कृष्ण की लीला या कोई चीज देख रहे हैं, उसमें खाना पीना भी भूल जाएगा, उसमें एक रस है, ये मन का रस है। उस मन के रस से भी आत्मा का रस जो है, भगवान के साथ में भगवान की सेवा करना, उनके साथ में क्रीड़ाएं करना, ये और बड़ा भाग होता है। कृष्ण ने जब अंतर ध्यान होने के बाद में गोपियों के गीत, गोपी गीत से एकदम साक्षात उनके सामने में प्रकट हो गए। जब कैसे प्रकट हुए? मन्मथ को तासाम आत्मभूत शौर्य स्मयमान मुखान पूजा सीताम सक्षात मन्मथ मन्मथ शौर्य मैंने बसदेव जी के पुत्र क्यों कहा? व्यास जी को जरा सुखदेव को स्वामी को जरा रोष हो गया। मैंने कहा कि यशोदा नंदन क्या नंदन ये तो शौर्य पुत्र है, नहीं तो इसका हृदय कितना कठोर नहीं होता जिन भोगियों को छोड़ करके अंदर ध्यान हो जाता। अब वो मन्मथ रूप धारण करके वहां पर पूरे गोपियों ने अपने दुपट्टे सर एकत्र करके एक एक जातीय गोपियां एक एक उनके लिए गद्दी तैयार की, अपने कुमकुम लगे हुए वस्त्रों को पूर्णिमी वस्त्र को बैठा लगा। कृष्ण वहां पर कुछ लज्जित हुए और लज्जित होते हुए मुस्कुराते हुए जरा आंखों को नीचे करते हुए वहां पर बैठे। इसलिए कुछ लज्जित हुए और हमने तुम्हारे साथ में अन्याय किया, तुमने हमारे लिए स्त्री अपने पति पुत्र घर बार देह गाय सब कुछ छोड़ दिया और मैं तुम्हें छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए लज्जित हुए और वही वनमाला जो गोपियां ने पहनाई थी उसको पहने वहां पर बैठे। कुछ गोपियां उनके पैरों को अपनी गोदी में ले और उनके तरफ में देख, कुछ गोपियां उनके हत्तारीने हाथ को अपने कंधे पर ले, एक ने बाया हाथ और उनके तरफ में देख, एक गोपी जरा दूर होकर के दूर से और अपने कटाक्षों से रोष भरे नेत्रों से उनके तरफ में देख रहे। यही उचित था, इसमें टीका कारण इनके नाम उनके शपथ है। जो दूर से रोष भरे उनके तरफ में देख रही वो कौन है? श्रीमती राधिका जी है, जो उनके चरणों को अपने गोदी में लिए हुए है। ये दक्षिण भाव वाली चंद्रावली इत्यादि रूप की संख्या। एक भद्रा जी है, उनके जब आए मेरे पास को ग्रहण करते हैं। ये सुहित है राधा जी की पक्ष वाली के ये तटस्था है। कोई शुद्ध पक्षों की वो श्यामला इत्यादि की है, वो भी जरा रोष से है उनके तरफ में देख रहे हैं किंतु निकट आई हुई। इसके बाद में गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया, एक प्रश्न एक पहेली मुझे नहीं आया। पहेली क्या? ये कोई प्रेम करता है तो कोई उससे प्रेम करता है, कोई लाख प्रेम करे वो प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है। पहला ये, कोई प्रेम करने पर उसे प्रेम करता है या करती है, अब कोई इसे प्रेम नहीं करने पर भी उसे प्रेम करता है या करती है, अब कोई प्रेम करो न करो वो किसी को प्रेम नहीं करता। पूछती है बड़ी भाव के साथ में बड़ी नम्रता के साथ, प्रभो आप इसमें से कौन से हैं जरा बतलाइए तो परीक्षा ले। कृष्ण के मुख से कृष्ण के ही तर्कों को युक्तियों को हटा करके कृष्ण को से ये कहा जाना चाहती हैं कि हमने अन्याय किया, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं किया, ये कहा ना चाहती। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं या करती हैं वो बनिए हैं। कोई दुकान लगा करके कोई पैसा देता है उनको उतना चीज दे देते हैं माफ कर, वो तो अच्छे जो बनिया हुए वो, नहीं तो तराजू घटिया रहती है तो उसमें कुछ मार दिया डंडी और अच्छे चीज का नमूना देखा करके खटिया मावजी उसमें चला जाते हैं, ऐसे बनिए हैं। इसलिए इसमें प्रेम नहीं है, सौहृद भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ये तू केवल बनिया नहीं है। इसलिए कृष्ण से कोई प्रेम करता हुआ कृष्ण से कोई चीज मांगे और उसकी सारी अभिलाषाएं कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई कामना वासना की जाहिर हो तो ये बढ़िया चीज है। इसमें धर्म नहीं है, इसमें कोई भी सौहृद नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सीधा है। और जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं इसमें धर्म भी है, इसमें सौहृद भी है, दयालुता भी है। ये कौन? माता पिता और गुरु। बेटा बेटी यदि माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं तभी माता पिता अपने पुत्र की कोई भी विपत्ति इत्यादि को नहीं देख सकते। लाख को नहीं माने तभी पाप और मैया सके पुत्र का कल्याण कल्याण भव। कुछ हो गया सब कुछ उसने क्या बंदूक बिताना और थोड़ी देर के बाद जाए मैया जहां मैया कहां बस सब सात कुछ मालूम। इसलिए इसमें धर्म और सौहृद पक्षांतर के रूप में कृष्ण ने ये बताया कि गोपियां ये तुम हो, मैं प्रेम करूं और न करूं तुम बिना प्रेम के भी हम सेवा नहीं करती, इसलिए तुम लोगों का प्रेम हमारे प्रति है ये आदर। किंतु मुझसे नहीं बताया कि तुम। और तीसरा कौन? तीसरा वो जो प्रेम कोई करे और न करे। अब इसको चार भागों में भी व्यक्त कर दो। ये विभिन्न प्रकार के स्तर प्रेम का बतला रहा हूं, इसलिए पहले वाला प्रेम प्रेम नहीं है। संसार में 99% नई जगह प्रेम ऐसा ही प्रेम करते हैं बढ़िया गिरी, इसलिए वो प्रेम नहीं है। घटिया किस्म का प्रेम वो बिजनेस। और कुछ उसमें थोड़े से रह जाते हैं। कृष्ण अपना प्रेम प्रकाश करें ना करें किंतु वो प्रेम करना कृष्ण नहीं छोड़ता, या प्रेम बहुत उच्च कोटि का है। हम लोग को ऐसे ही कृष्ण के प्रति करना चाहिए। अन्नाभिलाषिता सुंदरम ज्ञान कर्मा जनाप्रतम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। पर कृष्ण को सुख देखेंगे उसमें अपने सुख दुख को वो साधक नहीं देखता है। तीसरे को बताया देखो जो प्रेम करे और ना करे वो किसी को प्रेम नहीं करे, वो कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने आत्मनिर्भर करने वाला, उसको शरीर की सुखबुद्ध थे। सनत कुमार सनत कुमार सुखदेव गोस्वामी आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऋण के रहते हैं, इनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं जगत से। इसलिए उनको तुम कपड़ा धोती रुपया पैसा सोने का हाथ दे दो तभी उसको क्या मतलब, और यदि कुछ भी ना करो तभी क्या मतलब, ऐसे लोग नहीं करते। और दूसरे कौन? आत्माराम आप सकाम, जिनकी सारी कामनाएं पूरी होती है, किसी चीज की कामना ही नहीं है, उसको किसी से क्या मतलब? कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसे क्या मतलब? कुछ भी मतलब। ये आप सकाम कृष्ण कहते हैं देखो इन दोनों में से मैं किंतु ऐसा नहीं क्यों नहीं हूं? यदि आत्मारमण में होता आत्मा निर्माण करने वाला तो बल्कि पर जाकर के तुमको कैसे खुदा इसमें मैं आत्माराम है। आत्माराम के गुरु के गुरु के गुरु हैं किंतु कृष्ण दिखला रहे हैं भक्तों के प्रेम को पाने के लिए मचलते हैं। यशोदा जी का दूध गोपियों का मक्खन खाने के लिए मचल करके उनके घरों में चोरी करते हैं तो आत्मा काम कहा। यशोदा जी उनको गोदी से उठा करके बैठा गई और दूध को बचाने के लिए गई और कृष्ण ने क्रोधित होकर के फंड तोड़ कहीं मैं कहां आत्माराम, मुझको तो क्रोध भी आया, इसलिए मैं आत्माराम नहीं। और आत्मकाम मेरी कामना ही यदि पूर्ण हो गई तो राज क्यों करता तुम लोगों के साथ में, तुम्हारे पैर क्यों दबाता, तुम्हारे श्वेत बिंदुओं को किस लिए पूछता, इसलिए आत्मकाम ही नहीं। जहां यशोदा जी का स्नेह देखा उनको बड़ी भूख लग जाती है। भक्तों का यदि देखा केले का छिलका विद्वानी के घर में देखा बड़ी जोर से भूख लग जाती है। दुर्योधन के घर में मेवा त्याग दिया और इनके घर में विद्वानी के घर में जब गए तो इनको बड़ी जोर से भूख लगी। इसको आत्माराम के लिए आत्मकाम के लिए आत्मकाम उनको बड़ी भूख लगी और विद्रानी ने प्रेम में पककर जिधर का साथ फेंकने लगी, होश नहीं और छिलके और उसको ऐसे खा रहे हैं प्रेम के साथ में, आज द्वारका से अभी तक भूखे ही चलते हैं। बड़ी जोर से रोक प्रेम का आस्वादन करते हैं, प्रेम के लिए उसको भूख हो जाती है। भक्तों का भाव देखते ही उनको भाव का आस्वादन करने की लालसा जब होती है वो अपने को भी द्रोहित हो सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं आत्मा राम और आत्मा काम होता फिर रात करके तुमको क्यों बुलाता, फिर तुम्हारे पैर को मैंने दबाया और तुम्हारे श्रृंगार को मैंने ठीक किया। जो गोपी आई थी केवल एक आंख में पूछा कृष्ण ने, एक ही आंख में तुम अंजन लगाई दूसरे आंख में नहीं लगाई, उसको बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसको बैठा करके धीरे से काजल निकाल करके उसके दूसरों आंखों में भी काजल पड़े। ये आत्मकाम का ये लक्षण है न आत्माराम का लक्षण है, मैं दोनों में से। फिर तीसरा जो गुरु द्रोही होते हैं वो कोई प्रेम करे और न करे वो गुरुद्रोही हो गया। गुरुद्रोही भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा गुरुद्रोही होता है किसी कारण से अपने माता पिता से विरोध करता है और कोई अकारण ही माता पिता से विरोध करते हैं, इसमें दूसरे वाले जो है अकारण ही जो द्रोह करते हैं वो तो भयंकर महाअपराधी है, वो गुरुद्रोही है। माता पिता के साथ ही है, माता पिता का और गुरु का ऋण चुकाना बड़ा भारी कठिन है। जो माता पिता की और गुरु की सेवा छोड़ देते हैं मरने के बाद में उनके अपने शरीर का मान खाना पड़ता है, उसको स्वर्ग जाने के बाद भी किसी कारण से स्वर्ग हुआ वहां पर भोजन नहीं मिलेगा, यहां आकर के अपना शरीर पड़ा रहेगा उसी का मान खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा दिया गया है, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इनका ऋण कभी दूर नहीं, इनका ऋण एक तरह से ही दूर होगा यदि कृष्ण का किसी ने भजन किया तो कृष्ण का सभी ऋणी है उस महाऋण से, माता का ऋण, पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, सभी ऋण भगवान का भजन करने से हो जाता है। इसलिए कहा सर्वधर्मान प्रत्यक्ष महाम एक महान सुचर शोक मत करो, मैं सबका ऋण मिला दूंगा तुमको कोई भी क्लेश नहीं होगा कोई भी पाप। इसलिए कहते हैं कि वो गुरुद्रोही जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, अर्थात माता पिता स्नेह करते हैं गुरुजन स्नेह करते हैं किंतु ये गुरुद्रोही ये नहीं करते, और उसमें भी एक अकारण पिताजी वृद्ध हो गए मैया वृद्ध हो गए, कहते हैं मर नहीं जाता खांसते खांसते एकदम तबाह कर दिया, ये अकारण। और सकारण क्या है, उन्होंने बड़े बेटे को उसने सब कुछ लिख दिया, छोटे बच्चे ऐसे रह रहे ताकि तुमने सब कुछ उसको दे दिया अच्छा ये सकारण किंतु दोनों में कोई नहीं होना चाहिए। सकारण क्या, पत्नी ने कहा जब इसे हमारी नहीं बनेगी अब हम लोग अलग हो जाएंगे, बहुत समझाया नहीं माने अच्छा भाई सब सब हम वहां से आकर के पिताजी की कोई सेवा करें, ये सकारण किंतु है वो तुरंत ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, अकृतज्ञ माने क्या, किए हुए भलाई को नहीं मानने वाला अकृतज्ञ। हम लोग को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, माता पिता ने गुरुजनों ने कितनी हमारी सेवा की, एक गाय के लिए हम कृतज्ञ हैं क्योंकि दूध देती है वो मैया है और उसकी का मांस हम खाएं वो माता है, इसलिए अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अकृतज्ञ प्रेम करने पर भी नहीं करते हैं वो महास्वार्थी जघन्य स्वार्थी होते हैं, इसलिए इसमें प्रेम का स्तर दिख रहा है। जितना स्वार्थ अधिक है कोई संसारिक लाभ इत्यादि की पूजा और संसारिक कोई स्वार्थ का कारण है प्रेम दब जाता है। कृष्ण कहते हैं कि देखो देवियों इनमें से मैं एक भी नहीं हूं, आप क्या है वो क्या ये चाहती थी ये अकृतज्ञ के रूप में कुछ पूछ रही कृष्ण साफ गांव बचा करके निकले तो आप कौन है, कृष्ण कहते हैं मधुर उचित लोक वेगा स्वानंद वो वही अनुवृत्त का एक ग्रंथ वाला मया परोक्षम तिरोहिता इत्यादि कहते हैं देखो मैं इनमें से कोई नहीं, मैं तो अंतरहित होगा इसलिए जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति है और हम एक गरीब व्यक्ति और उसको कोई विशेष धन मिला, चिंतामणि मिल गई, पारस पत्थर मिल गया, उसके लिए वो सुरक्षित रख रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसको ले लिया है चोरी कर, अब चोरी कर लिया था है कर हाँ है तो एक पत्थर गुम हो गया, किसी ने कहा कि पत्थर नहीं होता चिंतामणि, और भी चिंतित हो गया। इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा यह प्रेम बढ़ाने की कि मैं अंतरिक्ष में कहीं गया था दूर दूर नहीं गया था, मैं तो छाड़ियों के अंतराल में रह करके तुम्हारी प्रेम में बातों को मैं सुन रहा था और जगत को यह जानना चाहता था कि तुम्हारा हमारे प्रति कितना प्यार और प्रेम है। जगत बाकी लोग इस सके लोग सख्ती है और समझे और सुने जब विरह में तुम लोगों की क्या अवस्था होती है इस चीज को दिखलाने के लिए और मैं उसे स्वयं प्रसादन करने के लिए मैं सीखता गया था। इसलिए देवियों तुम लोग हमारे प्रति प्रेम मत करना, तुम्हारे लिए दिख गया था जब तुम्हारा यह जो प्रेम है तो बढ़ता चले इसीलिए सीख गया था। ना कहते हैं न पारे हम निर्वचित हैं, देवियों तुम्हारा ऐसा ऋण है कि मैं तुम्हारा चीर ऋणी हूं। देवताओं जैसी लंबी कोटि कोटि वर्षों की आयु पाकर के दिन मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी कदापि पूरी नहीं हो सकता। क्यों कृष्ण कहते हैं जिसके बदले में तुम लोग कुछ मान लो, तो कृष्ण कहते हैं यदि मैं कहूं ये तुम मांगो इसमें जैसे कि सूर्य को राज्य दे दिया 36,000 वर्षता है, जो कोई जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं, कोई मुक्ति मांगता है उसको भी सर्विस दे देता हूं, यदि कोई बैकुंठ चाहता है तो बैकुंठ की गति दे देता हूं, सबको माता पिता तक उनके प्रेम का फलाभूत दे देते हैं, जो कुछ मांगता है उसे दे देते हैं। जो मैं तुम्हारे यहां मैं हार गया तुमको अपने बदले में कुछ ऋण को ऋण नहीं सका, क्यों तुम मांगोगी यदि कहूं जब मांगो तो तुम यही मांगोगे कि आप अपनी सेवा दीजिए, यदि सेवा कुछ न देंगे फिर वो ऋण बन जाएंगे। इसलिए ये दीदियों तुम अपने गुण से और स्वभाव से ही आप ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारा ऋण दूं, मैं तुम्हारा ऋण नहीं। गोपियों ने कहा कि आप हाथ करके दीजिए, क्यों आप प्रेम की मूर्ति हैं इसलिए आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इसी शब्दों से आपने हमें खरीद लिया, हम आपकी बची हुई हैं, सचमुच में हमारा ऋण नहीं ये आपका ऋण है। ये परब्रह्म होते हुए भी मन से तो नहीं काबू पड़ते किंतु भाव यही इतने बड़े होकर के भी और कहते हैं कि मैं आपके प्रेम का ऋणी हूं, मैं हम लोग आपकी जथा खरीद ऐसा ये प्रेम दोनों का या प्रेम कुछ संसारिक या और कोई वासना में नहीं होता, विशुद्ध ये प्रेम होता है। इसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु हुआ है। अब हम चले रात के अंतर ध्यान होने के बाद में कृष्ण आ गए मथुरा में अपूर्व उनको ले आए, फिर कृष्ण नहीं गए वृंदावन में, ब्रज में नहीं गए, दोनों में दूरी कितनी है दो अंगुल भी नहीं, ये दो अंगुल माने क्या यहां पर दो अंगुल मिलती है ना, तो वहां का बॉर्डर यहां का बॉर्डर तो मथुरा और ब्रज का तो मिलता जरूर होगा, वहां पर कितनी दूरी होगी बीच में एक डिमार्केशन लाइन केवल, दोनों में कोई दूरी नहीं किंतु बहुत दूरी है भाव राज्य की, एक ऐश्वर्य भूमि है और एक मार्ग दूसरी, दोनों के विपरीत भाव हैं, एक तरफ में खपत्ता प्रधान और एक तरफ में हमारे पुत्र हैं हमारे प्रियतम हैं हमारे सखा भाव है, ये भाव बहुत दूरी। अब कृष्ण आए हैं मथुरा में कंस को मारा, कंस के मारने के बाद में लोगों ने यह बतलाना आरंभ किया कि आप देव की पुत्र हैं वसुदेव हैं आप सत्य, कुछ दिनों के बाद में नंद बाबा को भेज दिया, दो दिन के बाद नंद लौट गए, कृष्ण ने उनके हाथों से कुछ आभूषण और वस्त्र भेज दिए मैया के लिए और वो लेकर के वहां पर वस्त्र नहीं दिया, नहीं तो गोपियां कहती कि तुमने कृष्ण को भेज आया रुपये पैसे आभूषण में, इसलिए तू चोर की तरफ में पीछे के दरवाजे से घुसे और यशोदा जी को कभी नहीं मुक्ति दिखलाया, ब्रजवासियों के सामने नहीं आते थे। उन दिनों के बाद में लोगों ने कहा भाई इसका उपनयन करा दो, नहीं तो ये फिर वृंदावन में लौट जाएगा और जब जिसमें उपनयन होगा खबरदार कोई ब्रजवासी ना आएगा। नंद बाबा या यशोदा किसी को निमंत्रण मत दो और सब जितने भारतवर्ती या बाहर में जितने हमारे कुटुंब वाले सबको बुलाए, सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया। किंतु दो अंग के फैसले पर मथुरा से पार्टी में वृंदावन उनको नहीं मिला, वो लोग नहीं आए। उपनयन हो रहा छोटे से कृष्ण भी अभी 10-10.5 वर्ष बलदेव जी दोनों का मुंडन हुआ, खड़ा दिए गए, एक लड़कियां दी गई गंडक और पीले रंग के कपड़े उनको पहना, अद्भुत सौंदर्य उसने से प्रकाश किया, कानों में कुंडल उसने। जब दीक्षा सब हो गई से जग पवित्र हो गया, जग पवित्र हो गया। उस समय में गुरु जी ने गर्गाचार्य ने कहा बेटा अब तुम दीक्षा मांग कर हो जाओ, माताओं से कहना कि माता जी दीक्षा दे और पिताओं से क्या कहना दीक्षा। कृष्ण की वो पीले रंग की वो ओढ़नी को उन्होंने बना दिया जोड़ और उसके गले में ऐसे डाल दिया जाओ तब से दीक्षा मांग लो। कृष्ण के उस समय में चिंतन में आया, भाव आया, हमारी मैया ने कहा था जिस समय तुम्हारा उपनयन होगा उस समय तुम्हारी झोली को पीर और मोतियों से भर दूंगी। कौन सी मैया यशोदा को मैया कहते हैं, यहां तो मक्खन और रोटी भी भूख लगती है तो रोही के देती है जो उनको मैया नहीं कहते, मैया कहने में लग जाती है। वो कहेंगे बेटा कुछ खा लो नहीं भूख नहीं, और रोहिणी जी आकर के अपने हाथों से उनको खिला देंगे क्योंकि अभ्यास है परिष्कार। इसलिए वो चिंतन करने लगे, मैया ने कहा था तुम्हारी झोली गिरी और मुझसे भर दूंगी, आज मैया कहां खुल गए और वो हाथों में सोने के थाल में हीरे जट और रत्न इत्यादि लेकर के देवती की खड़ी है कि हमारे पास में तो पहले दीक्षा सामने के लिए आएगा एकदम तैयार। और कृष्ण उधर देख नहीं गए हैं, उन्हें चली कहां देख रहे हैं मैया मैया कहां, और ऐसे उनके मुख में मैया और मैया और गिर पड़े आंखों से आंख उतर बता रहा बेहूस होकर मैया का। इतना ये अभी यशोदा जी के प्रति प्रेम है, ये लोग बुलाना चाहते हैं कि अब छत्री बन जाए, छत्री का उपनयन होता है इसे आज से अपने को ज्यादा समझे। कृष्ण को वो मंजूर थे, ये कहते हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र अब ऊपर से ग्रहण करने हैं क्योंकि यही तो भक्त है, इसे इनकी मनोवांछा करने के लिए कर रहे हैं। प्रेम गोपियां करती हैं, प्रश्ने करते हैं आदि, किंतु इसे जगत के सभी भक्तों को छोड़ देंगे ऐसा नहीं हो सकता, इसके आश्रय रहने रहेंगे। इसलिए जब भी द्रौपदी पुकार रही है उसको ये नहीं चाहिए, आप लोग पुकारते हैं जब कीर्तन करते हैं तो आपके लोगों के पास, इसलिए वो सबके हैं। इसलिए मथुरा भी उनको आना है, द्वारका भी जाना है, पांडवों के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा करना है और धार्मिकों का संहार भी करना है, बहुत से उनके कर्तव्य हैं। इसलिए प्रेम की भूमि मथुरा में है तथा यहां पर तो आना पड़ेगा ही, इसलिए यहां पर रहे। कुछ दिनों के बाद में गुरुकुल में गए और वहां से लौटे और यमुना के किनारे मथुरा में सट करके रहती हैं यमुना, उसी के ऊपर में बसते महाराज गुजरात अट्टालिका थी कंस का राजभवन अब कृष्ण के भी उसके मालिक है। उग्रसेन को उन्होंने राजा बना दिया, अपने राजा नहीं हुए उनको एक छोटे से राज्य से क्या जरूरत है, वो तो भूमंडल के राजाओं के राजा है, इसलिए राजा नहीं दिया। अब वही कृष्ण ऊपर में बैठे हुए उन्होंने उत्तर की तरफ में देखा देख रहे हैं वो ब्रज मनुष्य हो रहा है, गायें चरती नहीं, बछड़े दूध नहीं पीते, जब से मैं आया हूं सारी प्रकृति एकदम उदास हो गई है, बच्चे खेलते नहीं, गायें चरते नहीं, मयूर नाचते नहीं, कोयल कुहू नहीं करती, फूल समय पर जो पहले जो विकसित होते थे आप नहीं होते। इस तरह से कृष्ण देख करके भाव नेत्र से देखते हमारे पिताजी और माताजी हमारे गृह में बड़े दुखी। अंत में गोपियों के लिए कहते हैं, गीता में एक बतलाया गया है, अंतिम सर्व पूज्य तमाम पूजा सुन में वे परमाम बचा। अंतिम उपदेश में क्या उपदेश, आत्मज्ञान ये पूज्य ज्ञान है, इससे भी ऊपर और एक पूज्यतर ज्ञान, उससे भी ऊपर पूज्यतम ज्ञान, और सर्व पूज्यतम ज्ञान है गीता का उपदेश मनमनाभाव। मनमनाभाव मैंने क्या है, कृष्ण यहीं पर ये चीज को दिखला रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मदद चित्ता सब कुछ अपना देह देहत और सर्व धर्मान जो गीता में लिखा गया है उसकी मूर्ति है। कैसे सर्वधर्मान प्रत्यय होता है, गीता ने इसका दृष्टांत नहीं किया, इसका दृष्टांत एकमात्र को किया सर्वधर्मान प्रत्यय, जो सुधा जी सब धर्म को नहीं छोड़ सकते, नंद बाबा को नहीं छोड़ा, नंद बाबा को नहीं छोड़ करके भी कृष्ण को स्नेह किया, किंतु गोपियों ने क्या किया, पति सहस्त्र पुत्र देह दैहिक सब कुछ, सखा लोग भी अपने माता पिता को छोड़ करके कृष्ण के पास में नहीं आते थे, उनके भी माता पिता हैं, किंतु गोपियों ने अपना गृह अपना घर अपना शरीर अपना पति अपने सब कुछ जो उनका सारा यहां तक की प्रणाम धर्म यहां तक की लज्जा को भी छोड़ दिया। उद्धव जी से कृष्ण कह रहे हैं, हाथों में उद्धव जी उनको खुलते खुलते कृष्ण कहां रह गए, ऊपर में देखा कालिका ऊपर में कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कुछ अनमने से हो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, अरे भैया ये क्या, तुम किसके लिए इतना मन खराब करो, क्या बात हो। उन्होंने कहा कि उद्धव ब्रज विशाल बताना है, मैं ब्रज को भूल चुका, मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं मेरे लिए, तुम जाओ उनको कुछ सांत्वना दो। और गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं, हमारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विरह में सड़ा रही हैं, आप उनको जाकर के कुछ सांत्वना देना, मैं कुछ संदेश दूंगा लेकर के। इसमें उन्होंने कहा गोपियां मनमना भाव है, कैसे मनमना भाव है, एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, लाखों बछड़े और बछड़ियां पूजा करें, चलते चलते कृष्ण ने देखा एक घर के दरवाजे में एक कोई नवविवाहिता इंद्रप्रस्थ से अभी आई है, नंदगांव में भी नई दुल्हन। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बच्चों को लेकर के सखाओं के साथ में जब वन में चल रहे हैं प्रस्थान करने की दिशा में, वो दौड़ी हुई जाने लगी कृष्ण का दर्शन करने, चारों तरफ में वो हल्ला हो गया, कृष्ण वन में जा रहे हैं, सभी लोग दूर जा अपने अट्टालिका में बैठी, कोई कहां बैठी, चारों तरफ से कृष्ण को दर्शन कर रही है सब। ये नवेली जब जाने लगी तो उसके साथ ने कहा, देखो तुम मत जाना, तुम घर में बैठी रह, बाहर में जाने से एक काला संकल्प है तुम्हें दस लेगा, उसका बीज कभी नहीं उतरता, तुम मत जा। मगर तेरी बेटी किस लिए जा रही, अरे मैं तुमको मना कर रही, दूसरों का मत देखो अपना दे, तो आप क्यों जा रही हैं, मैं जा रही हूं कि तो तुम यहां बैठ। उसने कहा कि आप भी जा रही है, तो वो आगे चली गई, पीछे से चली गई और जाकर के बैठे वहां दरवाजे से आड़ में घूंघट की आड़ से उनको देखा। कृष्ण ने बड़े दूर से उनको देखा, जहां भाव है कृष्ण की नजर जरूर पहुंचेगी, कोई भी हो यदि कृष्ण के तरफ में थोड़ा सा भी यदि कुछ स्मरण किया कृष्ण उसे छोड़ने, ये जर्थान माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, उनकी यह प्रतिज्ञा है जरूर देखेगा। इसलिए जब गोपी ने देखा भावनेश्वर सिंह की तरफ में तो कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने एक बछड़े की पूंछ छू ली। अब बछड़ा क्या किया, कुत्ता हुआ उधर ही चला जिधर कृष्ण उसको डायरेक्शन पढ़ाता दे रहे हैं, ठीक एकदम उसी दरवाजे पर पहुंच गए कृष्ण, मानो बछड़े को संभालने के लिए दौड़ रहे हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, किंतु उद्देश्य है दूसरा, वो ठीक वहीं पर पहुंच गए। देखा जी वो तो अनमनी थी, इनके तरफ में एकदम सारे चित्र वृत्ति लगा करके एकदम देख कैसा सही धारा बस अपेक्षण गति से चित्त की सारी वृत्तियां अनयासे कृष्ण के तरफ में लग गई और खुद मुक्त तरीके हो गई। कृष्ण ने बंसी बजाते हुए थोड़ी सी बंसी निकाली, उसके कपोलों को स्पर्श कर दिया और निकट से उनको तरफ में देख करके फिर बछड़े को उड़ाया और बछड़ा छलांग मारता हुआ चला गया, कृष्ण भी चले गए। किंतु कृष्ण जो गए ऐसे नहीं गए, उसके चित्त को साथ उसके मन को उन्होंने लेते लेकर के और चले गए। सारे बछड़े चले गए, कृष्ण चले गए, जंगल के अंदर में अंतरिक्ष हो गए, चले गए भीतर। तब तक वहीं पर खड़ी रही, धूल उड़ती रही, उसको भी देखते रही, बेमन की हो गई और खड़ी एकदम लकड़ी की खा गई। अभी लौटना घर में अब होश नहीं करी। फिर वो कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ती समाप्त हो गई उसके साथ। अरे अभी तक तो खड़ी है कारखाना, जब वो बड़ा भारी बीस वाला सांप है, काला नाग है, वो यदि किसी को काट लेगा उसका दिन वो चाहता है यही तो देखा तो यही हुआ, उसको पकड़ करके झमझोर करके जान लगाने की चेष्टा की और फिर लौटी लेकर के घर से कहीं इसका पोष कैसा कराया जाए, कहीं से जाओ घर से दही निकालो, निकाल कर समर्थन करो। वो घर में गई अनमनी थी और एक खंडिया उठा लाई, उसमें रखा था सरसों, उसमें रखा था सरसों, जानते हैं सरसों रखा था, उसी खड़ी को लेकर के उसी में मंदिर देकर के चला। थोड़ी देर पर उसने साथ देखा ये घर घर तो नहीं कर सकते, ये तो खतर कर रही है, तो फिर क्या, अरे ये क्या कर रही है, अरे मैंने सभी मंथन करने के लिए कहा। अच्छा एक बात कर, उठ उठ उठ, उठाया जब कुएं से पानी भर रहा है और उसके सिर पर एक घड़ा दिए, उसके ऊपर में एक और घड़ा दिए, उसके ऊपर में एक और छोटा घड़ा दिए और यहां पर डोर और बाल्टी रस्सी दे दी। कुएं भी बहुत गहरे होते हैं, जब बड़ी रस्सी डब्बी सी दे दी बड़ी भार, उसमें एक और डोर लगा दिया, उसको इस हाथ पर दे दिया और इस हाथ में भी खड़े एक रख करके उसको खड़े दे दिया और दूसरे हाथ में अपना छोटा सा भी बच्चा था उसके गोदी में बैठा, ये इसको लेते जा और बांध कर करके जल्दी आ। देखा जी इसमें भी तो होश है, वो कुएं के समीप में गई, खड़े को रखा, बच्चे को रखा और पानी भरेगी, और भी भरने वाली बहुत सी किशोरियां थी, वो पानी उसमें से भर रही थी। उसने क्या किया, रस्सी लगा करके कान खड़े के अंदर में देना चाहिए तो उसने उसमें फंदा बना करके और बच्चे को ऐसे देख रही है, कृष्ण को देख रही है, चित्त तो वहां उसके घड़े में फंदा लगा, जब बस फंदा लगाया, अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, किसी ने कहा इसको भूत लग गया, दूसरी ने कहा भूत नहीं नंद का भूत लगा। इस तरह से ये मनमाना भव है। माला करते समय हम क्या करते हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, चार बार, अरे वहां पर गिनने का समय है, वो गिन रही थी माला, माला करनी चाहिए तो ऐसे तन्मय होकर के करना चाहिए। ये मन मना भाव का उदाहरण है, यही सर्वोच्चतम उपदेश गीता का है, नहीं समझते हैं जो। अब इसको पाने के लिए सर्वधर्मान प्रत्यय, सब धर्म को प्रत्याग करके जैसे गोपियों ने किया था वैसा तन्मय होकर के करना यही गीता का है। इसलिए कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं गोपियां मन मनाओ को मतलब चित्ता मत प्राण, वो हमारे प्राण स्वरूप हैं, वो हमारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। गोपियां इसलिए जाना, पहले माता पिता को सांत्वना देकर के फिर गोपियों के यहां जाना, ये बच नहीं सकती, अब मरी अब मरी अब मरी, मरती क्यों नहीं, मत संदेश है। हमने उनसे आते समय कहा था मैं कल आने की चेष्टा करूंगा और नहीं आता परसों जरूर आऊंगा, इसलिए वहां पर पल्सो नाम का एक गांव है। आयो रे वहां पर एक ग्राम है। ब्रज के जितने गांव है ना, जितने हैं सब कृष्ण की लीला की स्मृति देते हैं। आयो रे मैंने आ गया आ गया आ गया, पल्सो मैंने अभी पल्सो आएगा। इस तरह से पैगाम पैगाम मैंने क्या, यहां पर कृष्ण दूध पी रहे हैं। कोई खेलन मन है, कोई कुछ है, सब उनके नाम के ऊपर में ये सब रखे हैं। तो ये कृष्ण चल रहे जी, हाँ क्या बता रहा, ये नाम बताता गांवों के, ये उन्हीं के कृष्ण के ऊपर में ये सब नाम रखे गए हैं। मुझे मदद से तो ये कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि जाओ इनको सांत्वना देना, ये ऐसे उन्नत प्रेम हैं इसलिए मर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये परसों आएंगे, कल आएंगे नहीं तो परसों, किंतु कल गया परसों गया परसों गया परसों गया, अभी तक नहीं आ रहे। आएंगे जरूर उन्होंने कहा है, तो सत्य संकल्प है, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, इसलिए आएंगे, किंतु अभी नहीं आएंगे जरूर, इसलिए प्राण नहीं निकलते। और इसलिए प्राण नहीं निकलते, यदि वो सुनेंगे आएंगे कि गोपियां मर गई तो कृष्ण क्या करेंगे, एक सेकंड भी प्राण नहीं धारण कर सकते। इसलिए हम अपना दुख नहीं देखती, हम क्या देखती हैं, कृष्ण कभी दुखी न रहे, कितना बड़ा त्याग है, इससे बढ़कर के कोई त्याग नहीं है, इसलिए मर नहीं रहे। कोई गोपी कहते यदि हम मर जाए तो हमारे शरीर को समाज वृक्ष में लटका देना, उसी के साथ हम लटका देना, उसका प्राण जो निकले सूर्य के रश्मियों में जहां पर नंद बाबा का घर है उसके ऊपर में मर रहा था, पानी कहां पवन सरोवर में मिल जाए जहां पर के कृष्ण स्नान करते हैं, हवा कहां हो हमारे शरीर के जो कृष्ण वो नंद बाबा के आंगन में उठती रहे, जो कृष्ण हमारा स्पर्श करते रहे, हमारी मट्टी मिल जाए नंद बाबा के भवन में जहां पर की कृष्ण रोज बैठ चलते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते ऐसी गोपियों को तुम स्वांपना देने के लिए। तात्पर्य क्या, तात्पर्य इसका ये ब्रज ये प्रेम की भूमि है, मथुरा ऐश्वर्य की भूमि है। ऐश्वर्य और माधुर्य कहते हैं किसको, इस चीज को समझो, भगवत्ता को ऐश्वर्य कहते हैं, कृष्ण जैसे अलौकिक कार्य करते हैं एक साथ में, अर्जुन को मुख में ब्रह्मांड दिखलाया ये सब ऐश्वर्य है, गोवर्धन को धारण कर दिया ये भी ऐश्वर्य है, एक साथ में कोटि कोटि ब्रह्मा लोग उनको स्तव स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण उनके तरफ में देखते नहीं है, ये सब ऐश्वर्य है। और माधुर्य किसको कहते हैं, ऐश्वर्य रहे और न रहे, न लीला के अनुरूप सब उनकी लीलाएं हो कार्य हो तो इसको कहते हैं मधुर, उतना को कृष्ण ने मारा ये अलौकिक कार्य है, किंतु गोदी में बैठे हुए दूध पी रहे हैं और जब वो उतना मर जाए तो ये क्या है। आकाश मार्ग में चलने की इच्छा हुई, तृणावर्त असुर उनको लेकर के ऊपर गया, उसके गले को पकड़ लिया, जब वो मर गया तो कृष्ण ने किसी से लड़ा गए, सबसे पहले लड़ाई उनके कंस के ये पालवानों के साथ में पहले बोल रहे, इसके पहले कभी किसी से लड़े हुए बाल्य लीला करते हैं उसमें कोई मर जाता है और सुख अपने अपने कर्मों से वो अलग होता है। ये तो ब्रज की लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं। अब चले उद्धव जी मथुरा है, मथुरा के दृष्टि से गोपियां जब ब्रज में थी प्यार कर रही हैं, ब्रजवासी लोग प्यार कर रहे हैं, ये बात तो जो अब उद्धव जी को भेज रहे हैं मथुरा में, यहां के नेत्र से तुम देखो संसार देखे कि प्रेम क्या चीज है, इसलिए भेज रहे हैं। इसलिए मैंने जिस पाठशाला में बैठ करके प्रेम का पाठ पढ़ा था उसमें प्रिंसिपल राधा जी हैं और प्रोफेसर कौन सब हैं, ललिता विशाखा इत्यादि प्रोफेसर, ये शिक्षक, तुम उस पाठशाला में जाकर के पढ़ो कुछ दिन तो अढ़ाई अक्षर का प्रेम तुम समझ सकेगा, तुम जब लौट करके आएगा तो प्रेम के संबंध में मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अभी तुम प्रेम का अधिकारी नहीं है, समझता ही नहीं है तो तुमसे क्या मैं बात, इसलिए प्रेम की पाठशाला में कुछ सीखने के लिए उन्होंने भेजा। किंतु उद्धव को कहा कि जाओ उनको सांत्वना दे दो, क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम में तत्व है, तुम उनको समझा सकता है। ऊपर से कहा उद्धव जी को हो सकता है कि कुछ अभिमान हो, मैं बहुत ज्ञानी हूं, कृष्ण का बहुत मैं प्रेमी हूं, कृष्ण के बिना एक सेकंड में नहीं रह सकता, ये उनको ये सब भांग है। इसलिए उद्धव जी को दूसरे रूप में कहा जाओ वहां पर प्रेम का पाठ पढ़ो। कृष्ण ने कहा जे देखो हमारे पिताजी के चरण छू करके प्रणाम करना, मेरी मैया को प्रणाम करना, कहना जे मैं तुम्हारे लड़के पुत्र कृष्ण का मैं मित्र हूं सखा। उद्धव जी साधारण नहीं है, बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के मित्र हैं, उनके सलाहकार और मंत्री हैं। ऐसे उद्धव जी परम बुद्धिमान हैं, उनको भेजा। उद्धव जी ने कहा जे प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं रहूंगा, मैं कैसे वहां रहूं। उन्होंने कहा कि देखो जाओ वहां पर, देखा कि मैं संपूर्ण रूप से वहां हूं, मैं मथुरा में एक अंश में हूं, मैं एक अंश में ही हूं और सौ भाग में सौ भाग वहां पर हूं। जाओ तो पहले कृष्ण ने कुछ उनसे संदेश दे जाकर के कहना तुम्हारे कहने से उनको सांत्वना नहीं होगी, इसलिए तुम मेरे लेकर के वो चले। देखिए जिसे कृष्ण जा नहीं रहे हैं, लौट नहीं रहे, उनके हाथों में हाथ मिला करके और चल रहे हैं और रथ सोने का चल रहा है। उद्धव जी ने स्वयं रथ पर बैठ करके रथ चलाना रहा, कृष्ण खड़े रहे, रथ चला गया, भूल भी ओझल हो गई, वहीं के वहीं कृष्ण खड़े रह गए। फिर लौटे, लौटने के बाद में उद्धव जी वहां पर शाम हो गई, रथ को खड़ा कर दिया, नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा को खबर आई वहां से उद्धव नाम का एक लड़का आया है कृष्ण का मित्र, बाहर आए और उसको बड़े प्रेम के लिए साथ जाकर के रखा। देखा जिससे पहले इसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, बैठ जाएगा तो वहां का समाचार पूछूंगा, कन्हैया मेरा कैसा है ये पूछूंगा, उनको खिलाएंगे क्या। जब से कृष्ण गए हैं तब से चूल्हे लिपे पुते नहीं है, मकड़ों ने जाल भूल दिया और बर्तन जो है रसोई के औंधे पड़े हुए, वो मांजे नहीं गए, रसोई घर में भी चारों तरफ में मकड़े के जाल लग गए। इस तरह से वैसा है कावट है, किसके लिए रसोई बने जब खाने वाला ही नहीं गए, इसलिए रसोई सबसे नहीं। बड़ी मुश्किल से एक ब्राह्मण को कहा वो जाकर के खीर बना, उसमें भी चीनी नहीं, बिना चीनी का खीर उनको खिलाया और इसके बाद में थोड़ी विश्राम करने के बाद में दोनों बैठे। नंद बाबा कहते हैं कुछ बोलते हैं किंतु बोली नहीं निकलती, जो ही कृष्ण के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं हृदय फट जाता है, गला रुक्त हो जाता है, आंखें एकदम फट जाती है। बड़ी मुश्किल से कहा हमारा भैया वसुदेव कैसा है, वो बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस मारा गया, अपने पापों से मारा गया, उसके पापों ने उसे मार डाला, किसी ने उसे मारा नहीं। हो मेरा कन्हैया कैसा है ये पूछना ही चाहते हैं, गला रुक हो गया, बड़े जोर से रोने लगते, जितना ही उसको बोलना चाहते हैं वो कुछ नहीं बोलते। फिर बात उन्होंने बदली, पता चलते हैं फिर अब वही पूछना चाहते हैं कि कन्हैया कैसा, गला एकदम रुक हो गया। थोड़ी देर के बाद में बड़ी मुश्किल से कहा कृष्ण कभी हमें स्मरण करता है, स्मर्तिना हमें स्मरण करता है कृष्ण, क्या अपने मित्रों का कभी स्मरण करता है, कभी अपनी मैया का स्मरण करता है, कभी मुझे स्मरण करता है, क्या गोवर्धन को भूल गया, क्या वो जमुना के किनारे को भूल गया, क्या गायों को और बछड़ों को भी भूल गया। ओहो मैं जब घर में रहता हूं तो कृष्ण की झिंगली, कृष्ण की मुरली, कृष्ण के खिलौने मुझे याद देते, और मैं रह नहीं सकता कृष्ण को भूलने के लिए जमुना के किनारे, वहां पर कृष्ण के सुंदर सुंदर छोटे छोटे पैरों को देख करके उसमें शंख चक्र उसकी जो चीजें देकर दी, मैं अर्पित हो जाता हूं, मुझे थारस नहीं बनता। वहां से मैं गोवर्धन को जाता हूं, वो देखता हूं कि ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके नीचे उसने लीलाए नहीं की, उसमें कंदरा कंदराओं में उनने लीला की, उसकी छवि वहां पर पड़ी हुई है। मैं जहां जाता हूं मुझे धैर्य नहीं मिलता। ओह कृष्ण ने ये 60,000 कितना कितने हाथियों का बल वाले कंस को चारों को मुष्टि को क्षण मात्र में उनको गिरा दिया। उन्होंने अगासुर बकासुर और ये सब राक्षसों को खेल के खेल के खेलते ही उनका काम तमाम कर दिया। ओह ये कृष्ण ये कैसा कैसे उसको हमको ये कहते हुए वो बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला करके बच्चों की भांति रोने लगे। उद्धव जी ने सोचा कृष्ण ने सच कहा ये बड़े दुखी होंगे, इनको सांत्वना देना। क्या सांत्वना दूं? नंद बाबा आप मत रोइए, ये कहो उनको किसी का लड़का कोई मर जाए तो कोई सांत्वना देता है, मत रो मत रो। अरे ये लड़का आना जाना है ये प्रभु की हाथ की बात है, इसने रोने से क्या तुम्हारा लड़का आ जाए। किंतु जो कृष्ण के लिए रो रहा हो, जिनकी आंख से एक बुंद भी यदि आंसू कृष्ण के लिए निकलता हो, तो ये महान सौभाग्यवान है। सभी का हम लोग इतना सुनते हैं करते हैं भजन करते हैं कहां कहां हृदय इसलिए परम सौभाग्यवान व्यक्ति है जो कृष्ण का नाम सुनकर उनकी लीला कथाओं को सुनकर के तन्मय होकर के आंखें बरसने लगे, हृदय द्रवित हो आज ही को देखा। कहां कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर अनादि स्वयं सबके आदि सब कारणों के कारण कृष्ण यहां तक राम इत्यादि सबके अवतारों के भी मूल अवतार स्वयं भगवान कृष्ण उतर भी सोते हैं। आज उनको अपना पुत्र मानकर के ये रो रहे हैं, ऐसा सौभाग्य जगत में मैंने कभी देखा नहीं न सुना, इसलिए उनके मुंह से हटा दी चले गए। आप दोनों महाभाग एक ये यशोदा जी और आप ये ऐसे समस्त कारणों के कारण परम ब्रह्मा जिसको ब्रह्मा अपने ध्यान में भी नहीं देखते हैं और उसको तुम लोगों ने अपना पुत्र मान करके आंखों की पलकों की भांति तुम लोगों ने कृष्ण को पुत्री मान करके उनकी सेवा की उनको और अपना पुत्र मान करके उसके लिए रो रहे हैं। तुम्हारे जैसा सौभाग्य मानते नंद बाबा सुनते ही उनकी आंखें सूख गई और कहते हैं उनसे बेटा तुमने क्या कहा, तुम बड़े सौभाग्यवान तुमने कृष्ण का कर्म नहीं किया, कृष्ण जयंती अकल तुमको आई नहीं, मैं देखता हूं कि अभी अकल के दांत तुम्हारे टूटे नहीं, तुमको तनिक भी बुद्धि नहीं हुई। किसको कह रहे हैं? बृहस्पति के शिष्य कृष्ण के मित्र परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी उस उद्धव को कह रहे हैं कि तुम नीरा बालक है अभी दांत नहीं टूटे था। नंद बाबू को कह रहे हैं क्यों हमको कह रहे हैं? नंद बाबू ने देखो हमसे जगत में कोई दुर्भागा है? कोई भी दुर्भागा नहीं। तुम कहते हो ये कृष्ण भगवान है, मैं तो सुनता था कि वो मेरा लड़का केवल है और तुमने आकर के बताया कि स्वर्ण भगवान है। ऐसे भगवान को भी पा करके मैंने उसे खो दिया, वो हमारे हाथों से निकल करके अब चला गया मत्सर। हमारे अंदर में इतना भी प्रेम होता कभी छोड़ करके जाता? कभी अपनी प्रेम भूमि को छोड़ करके जहां पर कोई प्यार करता है उसको छोड़ करके जहां पर कम प्यार मिलता है उसे आनंद दिया। इसलिए मेरा जैसा दुर्भाग्य इस जगत में किसी ने जन्म नहीं लिया, आगे भी जन्म नहीं लिया, कुतो न भविष्य की ऐसा दुर्भाग्य मैं और हमारी पत्नी जो होता है। और भी रोने लगे तो निकालने में आया है हमने बहुत गलती बहुत भारी गलती सतु ये नंद बाबा जो कार्य मैं क्या करूं? यदि कहूं ये तुम दुर्भागा हो रो मत तो शास्त्र हमारा मुख बंद कर देते, ऐसा मत कहो। जो कृष्ण के लिए एक बुंद भी रोता है उसके समान जगत में कोई सौभाग्यवान नहीं। सचमुच में तो ये बात तो मैंने ठीक ही कही, किंतु नंद बाबा के तरफ से देखो तो ये ठीक है। नंद बाबा बोले और देखो बेटा तुमको मैं बतलाऊं एक बात था वो कौन सा कैसा उसका प्रेम बेटा चला गया और उन्होंने कहा हाराम आराम से इतनी बार मुझसे नहीं मिला, वही पर अपने शरीर को छोड़ दिया। मेरे अंदर में प्रेम कहां जो मैं सृष्टि के लिए अभी तक मर नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं, प्रेम गंधों की तरह हरऊ सौभाग्य वृंदावि सौभाग्य भरम प्रकाशित बंसी विलास्यानन अवलोकनम बिना विभक्त जब प्राण पतंगान। मछली को प्रेम है, सर्कुट में प्रेम है पानी से, पानी से मछली को निकालो क्या करती है, ये नहीं कहती कि मुझे पानी से प्रेम है, अपने प्राणों को इसको। हाँ, हमारा प्रेम तो ऐसा कृष्ण के प्रति नहीं हुआ, कोटि कोटि जन्म से कृष्ण से हम दिख रहे हैं, उन्हें भूल रहे हैं और प्राण नहीं निकल जाते। इसलिए प्रेम का आनंद भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं जीव हूं और हा कृष्ण हा कृष्ण कर रहा हूं, ये लोगों को दिखलाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आभारी आदमी हूं, मैं कृष्ण कृष्ण कर रहा हूं, आंखों से आंखों गिरा रहा हूं, सचमुच मेरी प्रेम रहता तो मैं मर जाता। बंसी बिलासा नन अवलोकनम बिना, मैं कृष्ण के बंसी बजाने वाले कृष्ण के मुखार विंद का दर्शन नहीं करा भी मर नहीं गया। दशरथ महाराज तुरंत राम राम का दर्शन, फिर उनके प्राण नहीं लौटे। उसी प्रकार से मेरे प्रेम कहां। इसलिए नंद बाबा तो बड़ी जोर से कहा जा रहा है, ये ठीक पर है, इनको क्या करो, इनका प्रेम कैसा है, अथाह अनंत है। हिमालय की सुनते हैं क्योंकि सबसे ऊंची 29,027 कितना फुट है, उससे भी बहुत ऊंचा लाखों में टोपी गांधी पहन करके उसकी देखते हैं कि कितना ऊंचा है, उसकी जड़ में आ रहा ऐसा देखा सबसे सबसे टोपी गिर गई। उद्धव जी की ज्ञान की जो टोपी थी गिर पड़ी, स्नान का बात करते प्रेम सकुश ने कृष्ण ने इसीलिए इसको देखने के लिए ये भेजा था। आज मेरा सौभाग्य है इस प्रेम की मूर्ति को बातल प्रेम की मूर्ति को देखा, जो सुधा जी की तरफ ने देखा, जो सुधा जी के भाव को देखकर के तन्मय होने बोली, हो ये तो होती नहीं, इसको ये तो बात भी कर रहे हैं। जो सुदामा का प्रेम और भी आघात था, ऐसे कहते 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 भोर हो गई। भोर होने के बाद में ये निकले स्नान करने, उस समय उन्होंने देखा क्या, कुछ गोपियां खड़ी हैं। कहां खड़ी हैं, नंदगांव में उद्धव प्यारी नाम का एक जगह वहीं पर बैठे। जो बयान है उन गोपियों के बदले में उन्हीं का जैसा रूप बना करके माया के गुरुकुल के घर में भेज दू, अपने पतियों के साथ में थे, इसलिए पति लोग समझते थे कि हमारी स्त्रियां तो हमारे घरों में ही है, इसलिए उनके प्रति कोई भी असुविधा नहीं प्रकाश की, कोई कुछ नहीं बोले। उसमें ये हमारी दुनिया से ही, और तब से वो घर में लौटी नहीं, उसमें एक दंपाव भी वहीं पर। उद्धव जी पहले पहले उनको देखा, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, ओह ये किसका रथ, एक सदरे देखता हूं, देखती हूं ये रथ किसका है, मैं नहीं जानती, आपका नहीं, अरे वो अब क्रूर आया है ना, क्रूर आया है, पहले एक बार क्रूर आया ले गया हमारे हम ये दूसरा बार क्यों आया, तू नहीं जानती, ये इसलिए आया है, सुनते हैं कि कलश मारा गया है, तो उसकी बारहवीं होती है ना, पिंडदान किया जाता है। देखा कि मथुरा में पिंडदान से ले आए, वृंदावन में चलो, इसलिए क्रूर आया है पिंड ले जाने के, पिंड यहां क्या है, सभी ब्रजवासी कृष्ण के पीछों में मर गए हैं, इसलिए सहज उसमें उनका जो पिंड निकलेगा उसको निकाल कर लेकर के कभी काफी तट पर और उसको इसलिए जाएगा। उनका दिया जैसे बात तो ठीक है, किंतु ये भी बात नहीं, बात यह है अपने मैया बाप को सिखलाने के लिए कि मैं मथुरा का राजा बन गया, मैं एक गरड़िया की भांति वो पालक था, गैया चराता था, अब मैं राजा नहीं रहा, अब मैं यहां पर कंस को मार करके यहां पर महाधिराज मथुराधिराज द्वारकाधीश बने हैं, इसलिए उनका नौकर भी आ रहा है सोने के रथ में चढ़ करके, तो वो किस रथ में आएंगे, इस चीज को दिखलाने के लिए मानो ये नौकर को भेजा है सोने के रथ में। उधर दिखा से लिखा है, मैं जानता तो सोने के रथ में चढ़ करके नहीं आता, ये तो बड़ी भारी गलती, बहुत सारी बातें करो, खुद दिन हिंदू को क्या करें, बड़े लड़की को वे सोचा पृथ्वी दो खंड हो जाती, मैं इसके अंदर में समा जाता। इतने में एक गोपी ने कहा, ये जानती है कौन है? कृष्ण का कोई अंतर होगा दूर दूर। मुझे कैसे तुमने समझा? इसने समझा, ये श्याम तो है, मैंने कृष्ण जैसे ही श्याम, ऐसे ही किसो कृष्ण से दो एक वर्ष छोटे हैं उत्तर, और कृष्ण का जैसा रूप परंग और बड़े मधुर स्वभाव इत्यादि वैसे, और कृष्ण ने आते समय अपनी बनमाला पहना दी, अपना पीतंबर भी पहना दिया, ये कपड़े भी पहना दिए, एकदम कृष्ण जैसे। गोपियां करती हैं, कौन गोपियां करती हैं? जो एक तमाम वृक्ष को देखकर के कृष्ण समझ करके और उनका आलिंगन करती हैं, मैं को कृष्ण समझती हैं, कोई काले बादल को देखकर के कृष्ण समझती हैं और तन्मय हो जाती हैं। आज ये गोपियां साक्षात कृष्ण के समान समभाव वाला ऐसे युवक को देखकर के भी प्रेम ने उनकी रक्षा की, नहीं तो वो कृष्ण समझ करके आलिंगन कर सकती थी। इसे प्रेम की रक्षा करता है, मर्यादा प्रेम की भी मर्यादा होती है, प्रेम अमर्यादित नहीं होता। इसलिए एक गोपी करिए, देखो श्याम है किंतु श्याम है, श्याम अच्छे बढ़े किंतु श्याम नहीं, श्याम है किंतु श्याम नहीं, क्या है ये? भ्रमर भी श्याम है, श्याम है किंतु श्याम नहीं है। तो ये श्याम तो है किंतु श्याम नहीं, कौन है श्याम का रूप है? कैसे? उद्धव जी सुन रहे हैं सर, बहुत दूर से कह रहे हैं श्याम नहीं है तो कौन है श्याम का? कैसे समझी? देखो आंखें भूल कर सकती, हमारे नाके कभी भूल नहीं करेंगे, लाख प्रकार का गंध हो, बेली जमेली जूही और कमल का भी गंध हो, उसमें वो पीले पीले वो क्या होते हैं राधा जी के अंग में चंपक चंपक पुष्प हो और बेली के पुष्प हो, सभी मिला करके, किंतु उसमें कृष्ण का गंध जो होता है वो अलग ही तरह का होता है, हम समझ जाएंगे ये कृष्ण के अंग का, ये जो आया है, ये जो फूल जो पहना है माला है, इसमें कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है, और ये जो कपड़े पहना है पीतांबर, ये इसका नहीं है, उन्होंने उचित रूप में इसको जरूर पहना दिया है, इसलिए उसके अंगों से ये कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है, इससे फूल नहीं हमारी गोपियां। मैंने नंद बाबा को देख करके मैं आश्चर्यचकित था, ये गोपियां तो उससे भी दो अंगुल और ऊपर वाली है, वहां जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और बैठे और 5 मिनट, बहुत लंबा प्रसंग है, मैं केवल एक भूमिका दे रहा हूं। अब यदि आऊंगा तो इसको एक दो श्लोकों को इसमें से सुंदर सुंदर आप लोगों को सुनाने की चेष्टा करूंगा, इसके सुनने के अधिकारी भी बहुत बिरले हैं, सुनाने वाले की तो बात नहीं किया। मैं इस रूप में मैंने अपने गुरु जी से जो कुछ समझा उसका थोड़ा सा कुछ साथ देना चाहता हूं, मैं अकेले ही क्यों और साथ करूं, आप सब लोगों को भी इस रस का सुख पिला दूं, जैसे कि आप लोगों के जीवन में भी उनके प्रेम के प्रति लालसा एक जग उठे, यदि लालसा जब उठी तो हमारा साधन बदलने का मुश्किल, और यदि लोग नहीं हुआ भागवत पढ़ने पर भी कुछ प्रसंगों को सुन तो हमारा जीवन व्यर्थ। इसलिए उद्धव जी वहां पर गए, एक गोपी वहां पर, उन सब गोपियों ने लेकर के एक मूल जो गोपी थी राधिका जी, भागवत में काश्चित लिखा, काश्चित मैंने क्या परोक्ष रूप में कहा, मैंने कहा राम इधर आ जाओ, किसी लड़के का नाम, एक ये डायरेक्ट कहना है, भागवत में ऐसे कोई प्रसंग नहीं लिखे गए, परोक्ष रूप में कहे गए, एक लड़का है गले में वैजयंती माला है, पीतांबर पहने हैं, मधुर मधुर वेणू बजाता है, वृक्ष तक भी उसे आकर्षित हो जाते हैं, बोलो तो ये युवक किशोर कौन है? इसी तरह से परोक्ष रूप में बतलाया गया, जैसे एक व्यक्ति है वो बैठे हुए हैं, वो लाल कपड़े पहने हैं, लाल उनकी कमीज है और शर्ट पहने के यहां पर रखे हैं, हाथों में घड़ी है और और भी उसके लक्षण बदला दिए, नाम नहीं था। तो ये काश्चित कौन हुए? उपदेव। इसी तरह से भागवत ने समस्त सारे प्रसंग बदलाए गए हैं, बल्कि इसमें रस इस बोलने का भी है। इसलिए प्रेम छिपा करके घुघट के अंदर नहीं रखना चाहिए, वो प्रकाशित करने से प्रेम रूप एकदम अंतरित हो जाता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं तो भूमि कोई सूर्य सोने की पुतली कमल के पत्रों पर, कमल के फूलों पर से पत्नी, उसके विरह के ताप से वो कमल झुट झुट हो गए। चंदन उसको लगाया गया था मोटा मलय मलय गिरी का, और वो भी मलय एकदम चूर चूर हो गया, सूख गया। ये गोपी मन ही मन में देख रही ध्यायंती, कृष्ण का अंग मिलन से जो मथुरावादी है ऐसे भाव नेत्र से देख रही है, जो वो बिना वो किशोरियों के रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। वो वहां पर एक फूल को छोड़ करके जैसे भ्रमर दूसरे फूल को प्यार करता है, तीसरे को फिर वहां नहीं लौटता है। यहां तक उसका यह भी ज्ञान नहीं रहता ये बिना गंध वाला ये फूल है, ये भी नहीं। इसी तरह से मथुरा में किसी किशोरी से मिलने का ध्यान करते हुए कुछ रोष से वो कुछ बोलने लगे, पूछ करके बड़ी मुश्किल से बैठी और बैठ करके बतला। कृष्ण भौरे बन करके वहां पर पहुंचते हैं उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और उद्धव जी ठीक उसी समय में पहुंचते हैं, कृष्ण उसके पीछे पीछे भौरे का आस्वादन करके वहां पर। राधा जी के चरण कमल ऐसे सुंदर मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने सुगंधी हैं, इतना कोमल हैं कि मानो समर जनकृत करता हुआ उनके चरण कमलों में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। मधु के लोग राधा जी ने भाव ने सत्र देकर कहा, छू मत मधु पकी तो अबंध हो मास किसान गृही शपथ न कुछ बिंदित माला कम कमश पास होते होना बात मधुपति तन माननी ज्ञान प्रसादम जब सदस्य विडम्बम जब चतुर समय करेंगे कैसे रोष भरी नेत्रों से करेंगे न जैसे कहां से उनको प्राण संचार हो गए। अरे मधु दूर हो दूर अपवित्र होकर के हमारे चरण कमलों को छूने की दृष्टता मत कर। वो कुछ कुछ गुंजार करता हुआ वहीं पर बोल रहा है राजा चरण, अब तुम कह रहा है सामने जी मैंने क्या किया जो मैं अपवित्र हूं। कहते मधु मधु मैंने क्या मधु पान करने वाला मधु कितवा बंधो, कितवा बंधो मैंने छलिया का बंधु ठग का बंधु। किसको ठग बतला रहे हैं? मधुपुरी में एक ठग रहता है, उसने मद्यशाला खोल रखी है, मद्य का विराट दुकान उसकी है, होलसेल वहीं से मधु दिखता है, मधु माने मदिरा दिखता है, उसका मालिक मधुपति है, मधुपति माने कृष्ण मधुपति, और तू वहीं से पूर करके आया है, जरूर तुमने मधुपान किया। स्वामी जी कैसे कह रही हैं? मैंने तो मधुपान नहीं किया, जरूर आया, इसका लक्षण तो है ना, क्या किसी को समझाने और संतना देने के लिए आना चाहिए तो वैसा वेद बना करके आना चाहिए। तुमको होश नहीं है, ज्ञान नहीं है, कहां पर कैसी बात करनी चाहिए, कैसे चरण छूना चाहिए, पवित्र होकर के आया है। अरे अपने गुल्फों में क्या लगाया? वो मैं स्वामी जी कुछ नहीं लगाया। अरे लगाया नहीं, मैं देखूं ये लाल जैसा रंग लगा हुआ है, ये क्यों जानते हो? मैं बतलाऊं ये कहां से आया? हम लोगों की शौक होने के स्थल में उनके बसक्षल में जो कुमकुम था वो कृष्ण से मिली और वो माला मुझार रही थी, तो उनका जो कुमकुम उसमें आया उसी पर तू बैठा, इसलिए ये तुम्हारे आ गए, और तुम फिर आता है हमारी उद्दीपना करने के लिए, तुम्हें देखकर के हमें रोष होता, तू यहां से जल्दी से चला जा। जिसका बुद्धि ऐसा है तो वो कैसे होंगे जदुओं की सभा में, जब उनको पकड़ेंगे जैसे किससे ये प्रेम करता है उस समय ये जदु लोग उनसे प्रतिशोध लेंगे, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ। अंत में बीच का एक श्लोक करके अपना वक्तव्य समाप्त करता है। मृगयोः कपन्द्रम् दिव्यदेहं धरति। इस तरह में कृत विरूपा स्त्री जीत कामयानं बलिम बलिमत्ता आवेश यथं सवतजन तदा अशत सौख्यम तत्कथान। कहते हैं मृगलयु कपेन्द्रम, स्वामी जी आप हमारे प्रभु की निंदा करते हैं, आप ऐसा नहीं करते, उन्होंने कौन सा ऐसा दोष किया, उन्होंने तो आपको छोड़ा नहीं, आपके प्रति बड़े अनुरक्त हैं, इसलिए उनसे संधि करना ही उचित मैं समझता हूं, उनसे संधि कीजिए, उनसे मतभेद मत कीजिए, वो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जाने, पहले तुम्हारे प्रभु का कुछ गुणगान करूं बतलाऊ। देखो उनकी बात छोड़ो, काले नाथ के जितने हैं ऐसे ठग सब हैं, धूर्त होते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते, सबसे नकली प्रेम करते हैं, ये काला उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दू, ये पिछले द्वापर में एक काला हुआ, वो दशरथ जी का पुत्र बनकर के उसने कहा मैं बड़ा भारी त्यागी हूं, उसने सब कुछ छोड़ दिया, पिताजी को मैया को राज्य को सबको भाई को सब छोड़ दिया, बिल्कुल इतना बड़ा त्यागी कि अपने स्त्री को साथ में ले गया, उसको क्यों ले आया, अरे जब भी साधु बनना है त्यागी बनना है तो उसे भी छोड़, तो उसे तो छोड़ा नहीं, उसे साथ में ले आया, खड़ा बनता था लकड़ी, बड़ा त्यागी जटाजुट बना दिया, अब धनुष की क्या जरूरत है, जब तुमने सबने कुछ पढ़ा तो धनुष भी साथ, यहां आकर तो उसने एक बंदर को मारा, ये बंदर कौन, मृगुरीम कपिंद्रम दिव्यदे लुप्त धर्मा, अरे जिस बंदर का मनुष्य आदमी मांस नहीं खाता, जिसे बहिया तक नहीं मारते, आज उस बंदर को किसने मारा, कौन जो सर्वत्यागी बना हुआ है, किसने मारा, तथा स्त्री जीत, मैं स्त्री जीत हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा व्यक्ति पाजी को मारा, किस लिए, वो भी पेड़ की आड़ से मारा, मारने के बाद में पाली के पास ले आए, मुझे क्यों हमको मारा, अरे तुम एक कामी वो एक कामी, उसकी स्त्री हमारे पास में और तुम्हारी स्त्री को हरण करके कोई मारा क्यों हमें, अरे तुम सीधा साधा हमारे पास में आता, पता कि हमारी स्त्री खो गई है, गोली करके तैयार कर हमको पकड़ करके सीता जी के साथ में तुम्हारे यहां कर देता, वो हमारे कांच के अंदर में बर्फों तक पड़ा था, बड़ी मुश्किल से वो एक बार सूर्य की पूजा कर रहे थे बाली जी, और वो रावण युद्ध करने के आ युद्ध हम दे ही युद्धम दे, उसने ऐसे पकड़ लिया जैसे मच्छर पकड़ते हैं यहां पर बंद करके, और वो सूर्य को दर्द चल रहे था, थोड़ी देर के बाद में कुछ बहुत दिन रहा, इसके बाद में वो दांतों से काटने लगा, नाकों से उनको नोचने लगा, वो भूल गए कि इसके अंदर में कुछ है, उन्होंने देखा जैसे कोई कीड़ा काट रहा है, तो ऐसे ऐसे किया तो भूल करके भागा रावण, उस रावण को मैं कहता था पकड़ करके ले आता कि पिताजी को साथ में, कौन सी बड़ी भारी बात है, तुम इसके पास में गए, राम ने कहा देखो हमने इसे मिताली की है, हमने प्रतिज्ञा की हमारी स्त्री को खुद करके लाएगा और इस स्त्री को मैं लाता हूं, तो बतलाओ तो ये दोनों काम गोपी कह रही है, देखो ये दोनों काम स्त्री, और कहते हैं कि हम स्त्री जीत, अरे तो देखो एक रूप न खाए और तुम तो राम का रूप देख करके मुक्त हो गए, अरे क्यों नहीं, जब जिरड़ी तक मुक्त हो जाती है, पशु पक्षी सभी मुक्त हो जाते, तो ये एक रूप न खा नाम की क्या चीज है, वो तो मुक्त हो गई, जिसको नहीं खाना चाहिए उस बात को उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मुझे भाग्या के रूप में मुझे ग्रहण कर लीजिए, मेरी जैसे सुंदरी कृष्ण में कोई नहीं है, और आपसे जैसा सुंदर कोई कृष्ण में नहीं है, ये जोड़ी बड़ी अच्छी बैठी, उन्होंने उनका नाक कान काट दिया, क्यों, अरे तुम कहते जो मैं सबकी कामना पूर्ण करता हूं तो कामना तो पूर्ण कर, तो उसका नाक कान क्यों काटा, वही कह रही है काला है ना, इसलिए काटा, मैं तो इसे शादी कर मानी, और संसार में विश्व में कोई भी इसका कुरूप देख करके इसके साथ में शादी नहीं करे, इसलिए काटा और बताओ ऐसा था कोई और जगत में होगा, ऐसा कुरुदेव कोई होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, इसलिए कालों की बात करते और सुनेगा भ्रम नहीं तो पड़े। तेरे प्रभु की ऐसी ये काले है उनकी महिमा और कुछ बदलाऊ इसलिए हमारी संधि उनसे नहीं हो सकती। एक काला और था काटने के साथ शुरू में उसने अपना नाम रखा बामन। वो भिक्षा मांगने के लिए गया, कोई कमी नहीं थी फिर भी भिक्षा मांग लेंगे और भिक्षा मांग करके क्या कहता है, कहता कि हमको दिख पत हो। उन्होंने कहा ले लो। जब लेने लगा तो कैसा किया, बड़ा भारी उद्धार एकदम और तीन पक्षे सारी पृथ्वी सारे भूमंडल यहां तक सब लोग तक पाताल लोग तक सभी ले लिया। तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं, एक से पृथ्वी दूसरे से समस्त ब्रह्मांड और तीसरे के लिए जगह मैंने भी। वो बेचारा क्या करता कर हम ही को माफ करो अपने को भी दे और उसको बांध लिया और बांध करके गिरा करके नाक पास से कष्ट लिया। वो तो प्रहलाद महाराज के प्रथा है, अरे ये प्रभु जी क्या कर रहे, इसने सर्वस्व दे दिया और आप इसको बांध रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो इस तरह से इनकी बात क्या कहेंगे, तो कैसे हैं ये काले वाले कौवे हैं। कृष्ण का नाम कहीं नहीं दिया, काला काला कब का कहीं है, कौवा का उपमा दिया, कृष्ण भी काले ये कौवा भी काला। कौवा भी स्त्रियों के सिर से खाने वाली चीज को लेकर से उनको ठुकराता है, ऐसे ही ये उसी चीज का खाते हैं उसी को ठुकराते हैं एक पुर से दूसरे। इस तरह से तरह तरह की भावनाएं करते हुए कभी क्रोध से कभी रोष से इन बातों को कहे। आज समय अधिक हो गया आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी, फिर हम कभी आएंगे छह महीने के बाद में, उस समय में हम लोग चेष्टा करेंगे उस समय मिलेंगे। तो उस समय में केवल इन्हीं छह सात या दस चौदह श्लोक हैं इनके ऊपर में कुछ थोड़ी थोड़ी जन विचार और व्याख्या करने की चेष्टा करें। आप लोग इसके बाद में हरिनाम कीर्तन करते हुए हम लोग आज का ये समाप्त करेंगे। मंशा सर्वतुभ्य सदा सिंधु है।